ओम शांति। हमारा सौभाग्य है कि इस भट्टी के कारण साकार बाबा मम्मा से मिले हुए कितने अनेक अमूल्य रत्न आपको मिल रहे हैं। बहुत से भाई बहन हैं, खैर साकार बाबा मम्मा को तो आप में से शायद एक ने हाथ उठाया था, एक दो ने देखा है, बाकी किसी ने नहीं देखा। बहुत से भाई बहन तो ऐसे हैं जो बहुत सी दादियों को भी नहीं जानते, दादी प्रकाशमणि जी से भी नहीं मिले होंगे, उसके बाद ज्ञान में आए और पैदा हुए हैं, लेकिन उनसे पालना लिए हुए उन्हीं की तरह नियमों मर्यादाओं में मजबूत इस यज्ञ के पिलर्स, इस तरह की विशेष आत्माएं हमारे बीच हैं जिनके साथ रहकर, जिनसे सुनकर भी ऐसा ही लगता है कि हम साकार से या दादियों से मिले हैं। तो ऐसे ही हमारे मोहन भाई जी, कहने को पहले आप इंजीनियर थे लेकिन बहुत लंबे समय से आप यहाँ यज्ञ में, महायज्ञ में रहकर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। साइंटिस्ट इंजीनियर्स विंग के आप मुख्य यहाँ हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं, वाइस चेयरपर्सन हैं, चेयरपर्सन है, पहले तो कहते कोई दीदी थे चेयरपर्सन अच्छा, तो इसीलिए आप, ये तो ऊपर की स्थूल बात है जिसमें को आप संभाल रहे हैं, विशेषता ये है कि अभी भी आपका दिल इस तरह से हमेशा करता रहता है कि हर एक ब्रह्मावत्स, हर एक ब्रह्मा कुमार कुमारी वैसा ही बने जैसा बाबा हमें देखना चाहते हैं, नियमों मर्यादाओं में मजबूत, प्रकृति जीत, हर एक पर अपनी कर्म इंद्रियों पर विजयी, और इस तरह की विजयी आत्माएं जब और जहां जाएंगी बाबा का नाम प्रत्यक्ष करेंगी, रोशन करेंगी। तो ऐसे हमारे वरिष्ठ भाई मोहन सिंघल जी हम सबको वो बातें समझाने के लिए आज हमारे बीच हैं। हम एक हाथ उठाकर अभिनंदन करते हैं।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। एक बार हम सब उस रीति से ओम शांति कहेंगे, क्योंकि दीदी का आदेश हुआ है कि कुछ यज्ञ की जो स्टोरीज हैं, यज्ञ की जो इतिहास रहा है, उस उन पृष्ठ को हम सब मिलकर के पलटें, तो उस रीति से पहले हम सब एक बार ओम शांति भी बोलेंगे, जिस रीति से यज्ञ के आदि में प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के साथ मिलकर के सभी ब्राह्मण वत्स भी कहा करते थे। अंदर एक गहरी श्वास पहले लेंगे और फिर उस श्वास को निकालते हुए ओम की ध्वनि करेंगे और फिर दूसरी गहरी श्वास लेकर उसे निकालते हुए शांति की ध्वनि। शांति की ध्वनि ही आज के विषय के अनुरूप है कि प्रकृति जीत भी कैसे बने, और प्रकृति जीत के साथ साथ कौन सा जीत बने? माया जीत, विकर्मा जीत, मन जीत, क्योंकि मन के अंदर ही माया या विकर्म या ये सब होते हैं। तो इसीलिए प्रकृति और पुरुष का ये खेल भी बना हुआ है। ये जो संसार में खेल चल रहा है, पुरुष और प्रकृति का खेल है। पुरुष माने आत्मा और प्रकृति माने शरीर। यदि इसे बेहद के दृष्टिकोण से लिया जाए तो परम पुरुष माने परमात्मा शिव बाबा और प्रकृति अर्थात ये पांच तत्व जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश, और ये जो पांच तत्व का जिनका ये शरीर भी बना हुआ है, ये विशाल इस नाटकशाला में हम सब खेल खेल रहे हैं। तो जो सब जीत होगा, मन जीत, विकर्मा जीत, प्रकृति जीत, विकर्मा जीत सब, तो वो क्या होगा व्यक्ति? सबके दिलों पर उसने विजय प्राप्त की हुई होगी, और वो सबके दिलों पर जो विजय प्राप्त करता है यहाँ पर संगम पर, वो ही भविष्य में जाके विश्व महाराजन विश्व महारानी बनता है। क्योंकि वहां पर जो महाराजा महारानी होते हैं वो केवल अपनी सत्ता के बल पर ही नहीं होते, बल्कि सबके दिलों पर वास्तव में वो राज्य करते हैं। इसीलिए राजधानी पर भी राज्य अधिकारी होते हैं। तो यहाँ पर संगम पर ऐसा कौन है जिसने सभी के दिलों पर विजय प्राप्त की हो? ब्रह्मा बाबा। तो मनुष्यों की बात नहीं है ये, वास्तव में जब हम कहते हैं भारत की संस्कृति भी है जो विश्व में, पूरा विश्व उसको बहुत मान देता है, सम्मान देता है। उस भारतीय संस्कृति के भी कुछ नियम हैं, और उन नियमों पर पूरा जो है भारतीय संस्कृति ने जो नियम दिए हैं, हमारा पूरा ज्ञान और आध्यात्मिकता उस पर आधारित है। और उसका पहला नियम ही है वसुधैव कुटुम्बकम, भारतीय संस्कृति का पहला नियम। वसुधा, ये पृथ्वी ही पूरा हमारा परिवार है। तो अक्सर करके तो ये समझा जाता है कि मनुष्य यही परिवार की बात है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चीनी जर्मन अमेरिकन जितने भी प्रकार के देश विदेश जितने भी जाति के मनुष्य हैं, सब हमारा परिवार है। लेकिन क्या इन्हीं से ही संसार बनता है? हाँ, ये संसार का एक प्रमुख हिस्सा है, लेकिन मनुष्य तो एक प्राणी मात्र है। तो इसीलिए मनुष्यों के दिलों पर राज करना वो तो एक बात है, लेकिन साथ साथ मनुष्यों के साथ और किस पर? पशु पक्षी जीव जंतु और पेड़ पौधे, संपूर्ण प्रकृति के ऊपर भी राज्य करना, ये एक बहुत बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए ये वसुधैव कुटुम्बकम का नारा भारतीय संस्कृति ने दिया है। वसुधा ही हमारा परिवार है। पृथ्वी, इसमें मनुष्य मात्र के अलावा सब कुछ है। देखो, बच्चा भी जब पैदा होता है ना, तो माँ की छाती से ही लगा रहता है। धरती माता की तरह इसी तरह है, धरती माता जो है उसके साथ पेड़ पौधे वो सब लगे रहते हैं जीवन पर्यंत। जहाँ पर पौधा बो दिया, बीज लग गया, वहीं पर जीवन पर्यंत वो पेड़ लगा रहता है। ऐसे ही छोटा बच्चा होता है ना, वो अपनी माँ की छाती से लगा रहता है, वहीं से ही उसे पोषण मिलता है और बस पालना मिलती है, प्रेम मिलता है। तो ये पेड़ पौधे जो हैं, ये हमारे परिवार के सबसे छोटे सदस्य हैं। सबसे छोटे सदस्य पेड़ पौधे जीवन पर्यंत वहां लगे रहते हैं। तो इसीलिए एक तो इनकी पालना करना वो बहुत हमारा जीवन का लक्ष्य रहना चाहिए। तो जब इतना लक्ष्य रहता है तो ये लक्ष्य का मतलब क्या है कि हम सबका भी एक फर्ज है, ये जो हमारे परिवार के सबसे छोटे सदस्य हैं पेड़ पौधे, ये इनकी रक्षा करना। और हम इनकी रक्षा नहीं कर पाए, पेड़ को विकास के नाम पर काटते रहे तो क्या हो गया, आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्या ये ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज और पर्यावरण प्रदूषण ये सब हो गई है। इसीलिए ये ऐसे विषय भी हुए हैं प्रकृति जीत, क्योंकि ये प्रकृति का ही एक अंग है। लेकिन प्रकृति शब्द के दो अर्थ हैं, एक प्रकृति माने ये पांच तत्व, प्रकृति जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश, और दूसरा प्रकृति माने मानव स्वभाव, भी मेरी प्रकृति ऐसी है, मेरी नेचर ऐसी है, मेरा मन ऐसा कहता है, तो मन उसको भी प्रकृति कहते हैं। ये प्रकृति स्वभाव, तो इसीलिए मन जीते जगत जीत कहा गया है। जिसने मन को जीत लिया उसने पूरी प्रकृति को जीत लिया, और ये प्रकृति के सबसे छोटे सदस्य हैं पेड़ पौधे। जब बच्चा बड़ा होता है तो क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है वो जरा चलना सीखता है तो पहले दो हाथ दो पैर चार से चलता है, शुरू शुरू में जब चलता है। ऐसे ही जो पशु हैं चौपाए हैं वो हमारी वसुधा फैमिली के, वसुधैव कुटुम्बकम, उसके सेकंड यंगेस्ट मेंबर है। यंगेस्ट मेंबर सबसे छोटे सदस्य कौन, पेड़ पौधे, उससे बड़े सदस्य पशु पक्षी, ये हमारे उसके सदस्य है। तो इसीलिए जैसे ही बच्चा बड़ा होता है फिर वो चलने लगता है दो पैर दो हाथ से, फिर और जब बड़ा होता है तो क्या होता है, फिर दो पैर से चलता है सीधा, तो मनुष्य। तो ये जो है हमारा, वी आर द एल्डेस्ट मेंबर, इस वसुधा प्रकृति के परिवार के हम सबसे बड़े सदस्य हैं। तो हमारा ये कर्तव्य हो जाता है कि हम अपने छोटे जो सदस्य हैं, पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधे, इन सब का पूरा ख्याल रखें। तो अभी संसार में तो लोग पर्यावरण के लिए ऐसा कहते हैं, लेकिन हमने देखा, हम तो ब्रह्मा बाबा के साथ काफी रहे, तो बाबा को देखा कि कैसे बाबा भी इन सब का प्रैक्टिकल जीवन में इन सब की पालना करते थे। हमें याद आता है, आपने हिस्ट्री हॉल तो देखा है ना, हिस्ट्री हॉल में ऐसे पहले तीन संदलियां रहती थीं, एक पर बाबा बैठते थे, एक पर मम्मा बैठती थीं, बीच की संदली खाली रहती थी। जब बच्चे आते थे पार्टी आते थे वो अपना अनुभव सुनाते थे और अनुभव सुना के जाते थे। और जब गुरुवार का दिन होता था संदेशी भोग लगाती थी, तो गुरुवार के दिन संदेशी भोग लगाती थी, बाबा मुरली चलाते थे, उसके बाद भोग आता था, भोग रखते थे, संदेशी होती थी, बस बाबा संदेशी को देखते ही कहते हाँ बच्ची हाँ गोसून कम सुन, बस बाबा तो कहते ना ये सब खेल पाल है, तो संदेशी को जरा सी दृष्टि दी थोड़ी सी और बस दृष्टि देते ही संदेशी एकदम उड़ जाती थी। और फिर आती थी समाचार सुनाती थी भोग का, और बाबा समाचार सभी क्लास सुनते थे, इतना तो सब जानते ही हैं। फिर क्या होता था, बाबा भी कैसे प्रकृति प्रेमी, भोग का डब्बी खोली बाबा ने, भोग को खोल के बाबा थोड़ा भोग हाथ में हथेली पर रखते थे और रख के कहते हाँ बच्ची आओ आओ बच्ची कहाँ हो आओ आओ, किसको बुलाते थे एक छोटी सी चिड़िया होती थी, बस वैसे कहीं नहीं दिखती थी, जैसे ही बाबा ने कहा बस फुदकती फुदकती आती थी, टेबल पर बैठी, फिर बाबा के हाथ पर बैठी, फिर बाबा के हाथ पर जो भोग होता था बस थोड़ा सा भोग खाती थी, चुपती थी, और उसके बाद फिर वो चली जाती थी। और कभी कभी क्या होता था, वहां बाबा के उधर एक घड़ी लगी, जैसे ये घड़ी लगी है ना, तो पहले एक ऐसी घड़ी होती थी पुराने जमाने की, तो घड़ी में हर घंटे पर घंटे बजते हैं, 6 बजे होंगे तो 6 घंटे बजेंगे, 7 होगा, तो वो तो सबने देखी होगी। लेकिन उस घड़ी में एक और विशेषता थी कि भाई जैसे ही जब घंटे बजते थे तो अंदर से एक दरवाजा सा खुलता था, बड़ी घड़ी थी, उसमें से एक चिड़िया निकलती थी, और मतलब वो तो मैकेनिकल लकड़ी की या मेटेलिक बनी होगी, और कू कू वो घंटे की बजाय वो उतना बार वो करती थी, तो आवाज करती थी, उससे पता चलता था इतने बजे हैं, और फिर वो चली जाती थी अंदर, और फिर वो दरवाजा बंद हो जाता था, फिर एक घंटे बाद खुलता था, एक घंटा ज्यादा बजता था, ऐसे पुराने मतलब वो घड़ी थी बड़ी, शायद जो पुराने लोग हों उन्होंने भी इस टाइप की चीजें देखी होंगी, हमने तो देखी है वो। तो कभी कभी क्या होता था कि वो चिड़िया जो है ना ये करके वहां रहती थी, और जब वो कोई टाइम होता था पूरा मानो 8 बजे, तो बस 8 बजे वो दरवाजा सा खुलेगा, वो कू कू करेगी, और ये चिड़िया तो एकदम जो असली चिड़िया होती थी चौकन्नी सी हो जाती थी, फिर वो वहां होती थी, तो ये तो कलयुगी है बाबा कहता है, और बस वो बंद हो जाता था तो ये चिड़िया उड़ के उधर जाती थी और उसको चोंच मारती थी, मतलब कि तू कौन है, हा? जैसे बात करने के लिए आवाज। फिर बाबा भी कई बार चिटचैट में कहते थे देखो बच्ची देखो ये कलयुग है, ये उसे वो कर रही है, बुला रही है, और इस दुनिया में तो देखो सब एक दूसरे के से झगड़ा करते हैं और बुलाते भी हैं, अब ये मनुष्य तो इनकी भाषा नहीं समझते, अपनी भाषा बोल रहे हैं, ऐसे बाबा कुछ चिटचैट करते थे। लेकिन ये चिड़िया भी ना कहां तो चैतन्य बाबा के उसमें आती थी, भोग खाती थी और वहां चली जाती थी, ये कोई हमेशा नहीं होता था, वो ये तो रोज हर गुरुवार को होता था जब भोग पे बाबा बुलाते थे, लेकिन वो चिड़िया के साथ तो जैसे कू-कू कुछ बात करने की कोशिश। तो कैसे बाबा हर बच्चे को ये ही अपने उससे देते थे कि हर पशु पक्षी जीव जंतु प्राणी से प्रेम करो, केवल ज्ञान का ये मतलब नहीं है बिल्कुल सूखे ज्ञानी हो जाओ, लेकिन हमारा जीवन ऐसा हो जो जीवन ही प्रेममय हो, बोले खुद, और बस सभी उसका आनंद लिया करते थे। वो बहुत बच्चे कोशिश करते थे कुछ मिठाई रख के चिड़िया को बुलाते थे, लेकिन वो तो आती नहीं थी। बस बाबा के पास ही जाके वहाँ भोग लेके, और क्योंकि वाइब्रेशंस भी काउंट करते हैं ना, तो बस आके उसके बाद चली जाती थी। और उसके बाद ये तो खैर उसके 18 जनवरी की भी बात बताएंगे, लेकिन ये एक अब चिड़िया के लिए तो हर एक कोई बोले ये तो भाई ऐसा हार्मलेस प्राणी है, हर एक कोई प्यार करता है, लेकिन बाबा की बात कैसे कि ऐसे भयंकर, वो हम लोगों ने सुना है, कहानियों में पढ़ा है, द्वापर युग से ऐसा होता था कि जो ऋषि मुनि सन्यासी बहुत बहुत हाई कैटेगरी के होते थे, जंगल में रहते थे, बस उनकी तपस्या पवित्रता ऐसी होती थी कि सारे संसार वाले उन्हें लाके वहीं पर भोजन और सब कुछ दे दिया करते थे, और जो हिंसक प्राणी भी होते थे वो बस दूर से ही आकर के कोई भी प्रकार की उनके पास आके हिंसा नहीं करते थे, नुकसान नहीं पहुंचाते थे, क्योंकि उनका ऑरा, उनका जो है वाइब्रेशंस इतने पावरफुल होते थे कि उनकी अहिंसक प्रवृत्ति उनकी हिंसा को दूर से ही, और द्वापर युग में इतने हिंसक भी नहीं होते होंगे। तो ये प्रैक्टिकल हमने एक बार यहाँ पर देखा बाबा का, यहाँ पर जहाँ अपनी डिस्पेंसरी है, ये सब तो पहले बिल्कुल कच्चा था, या 70s तक भी ये सब कच्चा था, 70-71 बाद में ये पक्का हुआ। तो ऐसे बाबा तो रोज क्लास के बाद किचन का भी चक्कर लगाते थे और सब तरफ, और आके तो एक बार ऐसे ही बाबा शाम के वक्त आ रहे थे अंदर से, तो थोड़ा कॉमोशन था, रे रे पकड़ो 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 मारो, तो एकदम आवाज आई, देखा तो कुछ भाई लोग डंडा वगैरह लेके, एक सांप बड़ा निकला हुआ था, और वो जहाँ डिस्पेंसरी है उसके पास से ही ना अंदर गैलरी है, उधर से आया और भाइयों ने उसे थोड़ा दबा के पास से पकड़ा। तो इतनी देर में बाबा आए, क्या हो रहा है बच्चे, क्या हो रहा है, बाबा बाबा ये सांप आ रहा है, बड़ा सांप है, अब दूर रहो। तो बाबा ने कहा क्या कर रहे हो बच्चे, बाबा इसे पकड़ रहे हैं और ये भाग ना जाए, और मतलब मारने का प्रयत्न कर रहे हैं। बाबा ने कहा बच्चे बच्चे को, बाबा का हर एक के लिए कोई भी हो, बच्चा या बच्ची, बस यही शब्द निकल, बच्चे को मारो नहीं, क्यों बच्चे को कष्ट देते हो, बाबा ये तो एकदम अंदर चला जाएगा, फिर पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। नहीं नहीं बच्चे, एक भाई होते थे हमारे पुराने, बलदेव भाई करके, जयपुर के, सुना होगा आप लोगों ने, सुना है। तो बस बाबा ने कहा आओ आओ बच्चे, तुम इसे ना ये तुम मटकी लाओ, एक मटकी लाई गई कि इसे पकड़ो पीछे से और इसमें मटकी में डालो और इसे बांध करके बाहर छोड़ दो। दो तो थोड़ा सा घबराए, मतलब स्वाभाविक है क्योंकि सांप ऐसा ही प्राणी है। तो बाबा ने कहा अरे अरे बच्चे घबरा रहे हो, चलो कोई बात नहीं, बाबा करता है, बाबा आगे बढ़े तो सबने रोक दिया, नहीं 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 बाबा आप अलग रहो, हम लोग करेंगे। तो उन भाई ने भी जरा बस बाबा को याद करके थोड़ा उसे पकड़ा, बल्कि सांप जो बहुत इतना वो हो रहा था हिंसक जैसा, बिल्कुल शांति से उन्होंने हिम्मत करके पकड़ा, उस मटकी में डाला और मटकी को बांधा गया ऊपर कपड़े से, और फिर बाबा ने कहा छोड़ के चले आओ। देखो ये सिद्ध करता है कि जितना जितना हम भी आत्मिक रीति से शक्तिशाली पावरफुल होते चले जाएंगे, हमारे सम्मुख यहाँ भी जो भी हिंसक प्राणी होंगे, जो भी ऐसे, वो भी हमारी सम्मुख आकर के अपनी दुष्प्रवृत्ति को छोड़ करके हमारे अधीन हो जाएंगे। बाबा ने भी अव्यक्त मुरलियों में भी कई बार बोला है ना कि आप शक्तियों में जब इतनी ताकत होगी तो अंत समय भले कोई कैसी भी दृष्टि वृत्ति से आएगा आपके सामने, लेकिन आप में वो क्या देखेगा, दुर्गा काली अम्बा का रूप देखेगा, और सामने आते ही आपके चरणों में पड़ जाएगा, प्रोवाइडेड हम भी उस स्थिति में ऐसे स्थित हों। बाबा ने एंड रिजल्ट तो बता दिया है, और ये केवल मनुष्यों के लिए नहीं, पशु और प्रैक्टिकल बाबा ने ये करके दिखाया। हमारे बहुत सारे भाई बहने बताते हैं बहुत यज्ञ की ऐसी घटनाएं, हम लोगों ने तो अपनी आंखों से नहीं देखी लेकिन सुनी है कि ऐसी ऐसी घटनाएं जो बिल्कुल असंभव प्रतीत होती थी, कैसे बाबा के सम्मुख आके वो संभव एकदम हो जाती थी, संभव ही नहीं बड़ी सहज हो जाती थी। तो प्रैक्टिकल वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी भारतीय संस्कृति का नारा है, सब पशु पक्षी जीव जंतु सबके लिए है। बाबा ने ये भी कहा है ना कि आप होंगे प्रकृति की हलचल होगी, बहुत हलचल होगी, लेकिन आपके सामने पास तक आके वहां भयंकर रूप में होगी, लेकिन आपके सम्मुख आते आते बिल्कुल शांत हो जाएगी, आप बिल्कुल उस हलचल से सेफ रहेंगे। ये प्रैक्टिकल है। वहां देखा है, आप लोगों ने सुना होगा कैलिफोर्निया में जब भूकंप आया था बहुत बड़ा कुछ वर्ष पहले अमेरिका में, तो चारों तरफ बहुत विनाश हुआ, बहुत ओवरब्रिज गिर गए, अंडरब्रिज चारों तरफ, और एक अमेरिकन भाई का ना एक वो था रिट्रीट सेंटर जैसा एक, तो वहां पर फार्म हाउस, उसका कुछ भी बाल बांका नहीं हुआ, उसमें कांच के भी टुकड़े, कांच में भी क्रैक नहीं आया, जबकि चारों तरफ बहुत एकदम विनाश हुआ। बाद में लोग उसके यहां गए, मीडिया वाले गए कि आपने किस मटेरियल का ये बनाया है कि आपका तो जरा भी बाल बांका नहीं हुआ, बाकी आपके आसपास वाले और दूर दूर तक सब विनाश हो गए, बहुत कांच टूट गए, दरवाजे गिर गए ये। तो उसने कहा भाई मटेरियल तो मेरा भी वही है साधारण जो कंस्ट्रक्शन में होता है, लेकिन मैंने क्या है जब भी मैं बनाता हूँ, वो कोई बीके नहीं था, इंडियन नहीं था, अमेरिकन, लेकिन वो भारतीय संस्कृति में पला हुआ था। उसने कहा मैं रोज प्रकृति से धरती माता से बातें करता हूँ, और मैं उससे बातें करके कहता हूँ हे माता देखो आप मेरी माता हो, मैं आपका बच्चा हूँ, अगर मेरे से आपको कोई दुख हो रहा है, कोई जमीन खोद रहा हूँ कोई कष्ट, तो मुझे माफ करना, और मैं उसके लिए आपसे बहुत माफी मांगता हूँ, और आप जो हो, माता क्या बच्चे को कष्ट दे सकती है, न तो माता बच्चे को कष्ट देगी, ना जो सच्चा बच्चा होगा वो माता को कष्ट देगा, तो इसलिए मैं तो नहीं देता, आपसे भी मैं ये आशा करता हूँ कि आप भी यहाँ पर बिल्कुल सुखदाई स्वरूप में रहो, न मैं आपको किसी प्रकार का कष्ट दूँ, ना आप मुझे कोई कष्ट का अनुभव होने दो, और मैं रोज प्रकृति से धरती माता से वार्तालाप करता, वही बाबा हमें सिखाते हैं ना। और इस कारण से, और इसका तो इंटरनेट पर काफी डिटेल आया था उस समय, कि ये भी एक बड़ा आश्चर्य की बात है, और कि किस प्रकार से उसका जरा भी बाल बांका नहीं हुआ। तो प्रैक्टिकली अगर बाबा ने जो जो बातें बताई हैं, हम उन योग के प्रयोगों को कर करके देखते रहेंगे ना, तो आप देखोगे कि बिल्कुल ऐसा अनुभव होगा कि बाबा हमारे सम्मुख ही बैठा हुआ है, हमारे द्वारा कार्य करा रहा है। आप लोगों ने मुरली में भी सुना होगा ना, बाबा कहता है अगर मैं देखता हूँ मेरे सामने कोई बच्चा पार्टी है, बड़ी अच्छी समझने वाली आई है, वो बच्चे बहुत अच्छे हैं, लेकिन समझाने वाला उतना अच्छा नहीं है, तो फिर मैं क्या करता हूँ है? क्या करता हूँ? उसमें भी प्रवेश करके मैं समझाता हूँ। हम भी अपना एक अनुभव सुनाते हैं कि हम तब इंजीनियरिंग में पढ़ रहे थे, और हमारा एक एक्सकर्शन टूर बाहर गया हुआ था, यह है 1965 की बात, 1965 की बात, 62 में ज्ञान में आए, 63 से इंजीनियरिंग कॉलेज में गए, बाबा ने भेजा और एक्सकर्शन टूर गया था, तो बड़ौदा में हम आए हुए थे, और बड़ौदा में ही वहां पर हमारा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो रही थी उसकी, वहां सेंटर तो कोई था नहीं, केवल एक भाई हुआ करते थे, मिलिट्री के भटनागर जी, बहुत पुराने होंगे वो जानते होंगे, दिल्ली के भटनागर भाई और उनकी युगल, वो एयरफोर्स में थे और भटनागर जी वहाँ पोस्टेड थे। तो हमने बाबा को लिखा था कि बाबा हमारा टूर जा रहा है और बड़ौदा में तो कोई सेंटर नहीं है, तो हमें क्या वहाँ क्या करेंगे हम। तो बाबा ने उन भटनागर भाई को लिख दिया कि ये बच्चा आ रहा है और इसके भोजन की तुम व्यवस्था करना। तो वहाँ एक हफ्ता टूर रहा और वहाँ उन्होंने, उनके यहाँ पर हम भोजन करते थे, और उन्होंने ही एक प्रदर्शनी का इंतजाम किया हुआ था। तब उन दिनों प्रदर्शनी बनी थी 65-66 में, तो प्रदर्शनी वहाँ लगाई थी। हम भी शाम को फ्री हो जाते थे, वहाँ जाते थे। तो बाबा वहाँ पर एक बार हम गए तो देखा कि कोई फॉरेनर्स का ग्रुप एक आया हुआ था, और वो फॉरेनर्स का ग्रुप समझने के लिए आया तो अब सेंटर भी नहीं था, समझाने वाले भी 2-3 लोग थे, बम्बई से ग्रुप आया हुआ था, प्रदर्शनी लगाकर उनको समझा रहे थे। तो उन्होंने तुरंत हमें बोल दिया कि ये भाई आपको इंग्लिश में समझाएंगे। अब हमें तो बिल्कुल भी इंग्लिश में समझाने का भी अभ्यास नहीं था और प्रदर्शनी भी नई नई बनी हुई थी बिल्कुल भी। तो उन्होंने तो बोल दिया, और वो 10-12 का ग्रुप था विदेशियों का, सारा इंग्लिश मैन थे। तो हम तो अंदर गए जहाँ, और अंदर जाके टोली रूम में, और फिर बाबा को बोला, बाबा आप हमेशा कहते हो कि जब समझाने वाला उतना अच्छा ना हो और समझने की पार्टी आई हो तो मैं तो प्रवेश करके समझाता हूँ। तो बाबा हम आपका आवाहन करते हैं, बाबा आप आओ और आपको ही ये समझाना है। बिल्कुल एकदम सच्चे दिल से बाबा को पुकार करके कुछ मिनट योग लगा के फिर हम बाहर आए और हमने उन्हें समझाना शुरू किया। तो वास्तव में हमें ही बाद में आश्चर्य हुआ कि किस तरह बिल्कुल फ्लॉलेस एकदम इस रीति से उन्हें बाबा ने समझाया। भले तन देखने में ये आता था, लेकिन बिल्कुल ऐसा बाबा ने समझाया कि हमें बहुत आश्चर्य हुआ। वो भी बहुत अच्छे रिमार्क लिख करके गए। तो देखो, एक तरफ बाबा जहाँ ये अनुभव कराता है कि बाबा जो कहता है उन बातों को प्रयोग करना वो हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन साथ में बाबा ने और भी अनुभव कराया। 2 दिन बाद फिर दूसरी पार्टी आई, और वो विदेश की, ऐसे ही समझने के लिए, क्योंकि वहां पर ऑयल इंडस्ट्री की ट्रेनिंग चल रही थी तो उसमें काफी लोग आए हुए थे। तो उन्होंने फिर हमें ग्रुप दे दिया और हमने कहा हाँ हाँ हम समझाएंगे। बाबा कहता है ना, अपने को मियां मिट्टू समझने लगे, तो एक बार समझाया तो हम भी अपने को मियां मिट्टू समझने लगे, हाँ हम समझा सकते हैं। ये बात को भूल गए कि बाबा ने ही समझाया, और बस उन्हें समझाने का प्रयास किया। और सके उस दिन तो हम मतलब 10% भी नहीं समझा सके बिल्कुल। तो बाबा देखो ये भी अनुभव कराता है कि बाबा को जब हम सेवा की और बाबा को अर्पण कर दिया तो उसका देखने वाला करण करावनहार बाबा ही है। और जहां हमने उस सेवा के फल को स्वीकार कर लिया फिर बाबा भी साक्षी हो जाता है, ठीक है तुम समझाओ और तुम देखो कि क्या रिजल्ट होता है। और वो अनुभव किया हमने। तो इसीलिए कभी भी हम सेवा के फल को ना, यहाँ कच्चा फल, उसको अगर स्वीकार कर लेंगे तो क्या होगा ना, कच्चे फल को लौकिक रीति से स्वीकार करो तो क्या होता है, अपने ही पेट में दर्द होता है ना, कच्चा होगा हजम नहीं होगा। तो ये ही बाबा हम बच्चों को इतना मैच्योर बनाना चाहता है कि करण करावनहार बाबा है। हम बच्चे भले करते हैं, बाबा क्रेडिट भी हम बच्चों को दे देता है, लेकिन वास्तव में करण करावनहार बाबा है, बाबा ही कराता है। ये हमने कई बार इस चीज का वैसे भी अनुभव किया। हमें याद आती है इस संदर्भ में और घटना, क्योंकि बहन जी ने कहा है ऐसे ही ये बताए, तो हम वहाँ धनबाद में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस इंजीनियरिंग कॉलेज है, अभी तो वो IIT है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो वहाँ पढ़ने गए हुए थे, 4 ईयर कोर्स था। तो वहाँ पढ़ रहे थे, हमारे साथ एक और भाई है, नीचे ही है आजकल भी वो, विनोद भाई। तो हम दोनों वहाँ पर ज्ञान में आते थे और वहाँ पर सेंटर एक साल बस पहले वर्ष ही बाबा ने देखो करण करावनहार बाबा है, नहीं तो फर्स्ट ईयर में ही गए, कोई भी अपने अंदर क्या होता है, जो खुद पढ़ने वाला होगा घर से जिसके पैसे आते होंगे वो सेंटर कैसे खोल सकते हैं। लेकिन अगर बाबा संकल्प देता है और संकल्प को हम अपने अंदर धारण करके उसको चरितार्थ करने की कोशिश करते हैं तो सफलता हुई पड़ी है। अब हम नॉर्मल सिलेक्शन हो गया था, लेकिन काफी बॉटम की तरफ सिलेक्शन था, 150 स्टूडेंट लेते थे, हमारा करीब 140वां नंबर था इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्शन में। तो वहां पर सिलेक्शन हो गया और पढ़ाई होते थे, लेकिन फर्स्ट ईयर में वहां फिर एग्जाम होता था स्कॉलरशिप के लिए, और बस बाबा के पत्र आते थे, बच्चे वहां गए हो वहां कोशिश करो बाबा का सेंटर खोलने की। तो हम भी सुनते थे लेकिन सीरियसली उसे नहीं ले सकते थे, क्योंकि ना तो धन से सामर्थ्य, ना कोई अनुभव सेंटर खोलने का, कुछ भी नहीं। लेकिन बाबा जानी जाननहार है, बाबा करण करावनहार है, तो बाबा देखता था। और वहां पर फर्स्ट ईयर में ही जब रिटन कम्पटीशन हुआ उन सब 150 स्टूडेंट्स का आपस में, उसमें बस हमारा फर्स्ट 20 में नाम आ गया और स्कॉलरशिप मिलने लगी। तो देखो जो होता है, बाबा को काम कराना होता है, घर से तो जो पढ़ने के लिए आता ही था, लेकिन बाबा में ये दिल थी कि बाबा यहाँ सेंटर खुले, नहीं तो अशुद्ध अन्न हॉस्टल का पेट में पड़ेगा, वो ठीक नहीं है, सेंटर खुल जाए। तो बस अंदर में दिल थी, तो उस तब तो सस्ते का जमाना था काफी, तो इस तरह वहाँ सेंटर खुल गया। और वो सेंटर खुलने से वहाँ पर और स्टूडेंट आने लगे, और थोड़े समय में ही वो सेंटर भी अपने पैरों पर खड़ा हो गया। तो जो बाबा कहता है हिम्मत मर्दा मदद खुदा, तो अगर हम बिल्कुल देखने में असंभव कार्य प्रतीत होता है, लेकिन अगर बाबा थोड़ा भी इशारा देता है और हम अगर हिम्मत करते हैं, वो कार्य सिद्ध हुआ पड़ा है, सफल हुआ पड़ा है। तो ऐसे ही हम दोनों भाई लोग वहां पर हॉस्टल में रहते थे और सेंटर पर ना वहां पर भोजन करने लगे, फिर 3 वर्ष तक शुद्ध भोजन मिलता रहा। तो एक बार ऐसी हम लोगों को मन में आया कि चलो हम कल गुरुवार का दिन है, और पहले तो संदेशी वगैरह बहुत होते थे, हर सेंटर पर एक एक संदेशी, 2 संदेशी का पार्ट होता था। और वहां पर भी 2 बहनें थे, तो एक जो बहन थी संदेशी का पार्ट था, गुरुवार को वो भोग लगाया करते थे। तो बुधवार के दिन रात को हम लोगों ने निश्चित किया कल को चलो बाबा को हम भोग लगाते हैं। तो हॉस्टल में ही हीटर वगैरह रखा हुआ था, सुबह उठ के नहा धो के भोग बनाया, और भोग बनाने में उन सब में देर हो गई। यूजुअली तो 7 बजे भोग लगता है, और उस दिन करीब 7:45 तक हम लोग भोग बना के और ले करके डिब्बी में वहां पहुंचे हम लोग दोनों भाई। और वहां लेट तो बहुत हो गया था, हम लोग तो सोच रहे थे भोग लग गया होगा। वहां पर पहुंचे तो हमने कहा कि दूसरी छोटी बहन से कि लो ये भोग लाए हैं बना के, और बाबा का भोग लग गया क्या? कि नहीं 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 बहन जी, तो बहुत देर से बैठी हैं, लेकिन अभी तक बाबा ने उनकी रस्सी नहीं खींची, और बस लाओ अब भोग दो, जल्दी से भोग दिया उन्होंने रखा, और फिर वो बहन ध्यान में चले गए। यज्ञ के मतलब ज्ञान की भी शुरू की अवस्था का ये हम लोग वर्णन कर रहे हैं। तो बहन ध्यान में गई और कहा बाबा से, बाबा आज मैं इतनी देर से बैठी हूँ, हमेशा तो आप मेरी 5-7 मिनट में ही रस्सी खींच लेते हो और भोग स्वीकार करते हो, आज 1.25 घंटे से बैठे हो आपने रस्सी नहीं खींची। तो बहन बाबा ने कहा, अरे बच्ची देखो हमारे दोनों बच्चे इतना प्यार से बाबा को भोग बना रहे थे और वो ला रहे थे, अब उनका भोग लिए हुए मैं तुम्हें कैसे बुला लेता। न तो हम लोगों ने फोन किया, न बहन जी को बताया। पहले तो 64-65 की बात है, न उन दिनों मोबाइल होते थे, कोई इंटरनेट नहीं, इवन लैंडलाइन भी नहीं इतनी इजीली अवेलेबल होती थी। तो देखो हम लोग संकल्प करते हैं, बाबा कहते हैं ना बच्चे संकल्प करो, प्रैक्टिकल चाहे बाद में होगा लेकिन संकल्प आपका बाबा को पहुंच जाता है। बहनों को भी नहीं मालूम, ना किसी को बोला, लेकिन बाबा को ये संकल्प पहुंच गया। इसीलिए संकल्प तो हमारी अपनी प्रॉपर्टी है। कोई भी महान संकल्प करो और महान संकल्प को रोज अपनी दृढ़ता का जल देते रहते हैं अगर, तो वो दृढ़ता का जल देते रहेंगे तो उसके अंदर सफलता हमारी समाई हुई है। तो इसीलिए कभी ये ना समझो मेरे में तो ये सामर्थ्य नहीं है, नहीं, मैं वही हूँ, कल्प पहले वाली विजयी आत्मा हूँ, कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। बाबा ने मुझे ये कल्प कल्प का विजयी बनाया है, ये ही संकल्प अगर हम रखते हैं तो बस देखो आप किस प्रकार से हमारी सफलता हुई पड़ी है। तो ये बताने का लक्ष्य यही है, भाव ये है कि हम हरेक कोई बहुत एक एक बहुत सामर्थ्यवान आत्मा है। खैर इस तरीके से ये होता गया, ज्ञान में आगे बढ़ते गए, वहां से इंजीनियरिंग पास की, पास के बाद बाबा के पास यहाँ आते थे। पहले तो बाबा से ऐसे ही मिलते थे जैसे अपनी दादियों से, बहनों भाइयों से मिलते हैं मधुबन में, बड़ा इजीली बाबा अवेलेबल था और बाबा से मिला करते थे और इस तरीके से। लेकिन बाबा से मिलते जब पास कर लिया, उसके बाद हमने बाबा को कहा कि बाबा हमारे पास ये 3 जॉब हाथ में है, अप्लाई किया। तो बाबा से पूछा, तो हम लोग जानते थे कि भाई बाबा भगवान जो बात बताता है उसमें तो सफलता हुई पड़ी है। तो बाबा ने वो चूज किया जो कि हमारी लास्ट चॉइस थी, क्योंकि एक हमारा दिल्ली में सिलेक्शन हुआ था मेट्रोलॉजी में, एक हैदराबाद में लेबोरेटरी थी जियोफिजिकल लेबोरेटरी, और एक ओएनजीसी में। तो ओएनजीसी में आसाम में बहुत दूर, जहां आसपास भी कोई सेंटर नहीं था, 1000 मील दूर कलकत्ता सबसे पास में पास सेंटर था, वो भी 1000 किलोमीटर दूर। तो हम तो बिल्कुल चॉइस ही नहीं थी वो हमारी, लेकिन बाबा ने कहा नहीं नहीं बच्चे वहां जाओ, वहां बाबा के बहुत भोले भाले बच्चे बाबा का इंतजार कर रहे हैं, वहां जाके उन्हें संदेश दो। और बस जैसे उन्हें संदेश मिलेगा बाबा तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा और बाबा तुम्हें बुला लेगा समय पर। हमारी इच्छा नहीं होते हुए भी बाबा को बताया, बाबा कोई सेंटर नहीं पालना, नहीं नहीं बच्चे वहां जाओ, बाबा ने, बाबा तो सजेशन दे रहा है। तो चलो वहां गए और वहां पर बस थोड़े समय में ही बाबा ने तो वंडरफुल पार्ट दिखा दिया वहां सबको। क्या पार्ट दिखाया, क्योंकि बाबा का रोज हर हफ्ते पत्र आ जाता था, बच्चे नाम था उस जगह का शिव सागर, जहां पर ओएनजीसी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, तो वहां पर पोस्टिंग हुई थी, बच्चे वहां जाओ। और वहां पर हमने लिखा था बाबा शिव की बहुत बड़ा मंदिर है, यहाँ पर पूरे स्टेट में प्रसिद्ध है, और वहाँ बहुत बड़ी लेक है जिसका नाम शिव सागर है, उसके नाम से ये सिटी का नाम पड़ा। और तो बाबा कहता था बच्चे वहाँ जाओ, रोज शाम को जाके चित्र लेके बैठ जाओ, उस पर समझाओ, कोई आत्माएं निकलेंगी। और बस जैसे जैसे बाबा कहता गया वो करते गए, और कमाल तो बाबा की है, क्योंकि बाबा ही जानी जाननहार त्रिकालदर्शी है। तो थोड़े समय में ही वहां पर कई ऐसी भावनावान आत्माएं निकल गई। उन्होंने निमंत्रण देके एक बहुत बड़ा हॉल, एक शिव मंदिर था, दूसरा लक्ष्मी नारायण का मंदिर, वहां पर उनके मारवाड़ी लोग थे वहां सारे, तो उन सबका वहां पर क्लास शुरू हो गया। लेकिन उससे भी आश्चर्य की बात ये कि जैसे ही जब क्लास शुरू हुआ और वहां पर भी गुरुवार को भोग लगाते थे सब कुछ, तो कुछ माताएं कन्या ऐसे थे कि बस आते थे थोड़ा भी ज्ञान सुना और ध्यान में चले जाते थे, और वहां साक्षात्कार का पार्ट इतना खुल गया, थोड़े से समय में ही बहुत आत्माएं ध्यान में जाने लगी। अब भक्ति मार्ग में तो ये तो बहुत बड़ी बात समझी जाती है, सब साक्षात्कार में चले जाएं, ध्यान में चले जाएं, और वो थोड़े समय में ही, क्योंकि बाबा का काम था करण करावन हार बाबा, तो बाबा ही सारा ये सब कराता था। तो देखो, चूंकि बाबा ने कहा था, बाबा ने भेजा था, और वहां पर थोड़े समय में ही बहुत सेवा हो गई। अभी अभी भी बस लास्ट ईयर ही, चूंकि 1967 में हमने पास किया था और 67 में ही वहीं पर चले गए थे, तो 68 में पहले उसकी नींव पड़ी थी शिव सागर की, और अभी 2018 में ही वहां उन लोगों ने उसकी अपने ज्ञान की आसाम में नॉर्थ ईस्टर्न में गोल्डन जुबली मनाई, जिसमें जानकी दादी जी भी गए थे, और जानकी दादी जी वहां जा करके उस गोल्डन जुबली समारोह का उद्घाटन किया, और वहां पर पहला नॉर्थ ईस्टर्न का ये रिट्रीट सेंटर वहां पर बना उधर। तो देखो, कोई कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन बाबा ने कैसे वो सब काम वो बाबा ने कराया। और वहां पर चूंकि बाबा ने कहा था कि बच्चे जब काम पूरा हो जाएगा बाबा बुला लेगा, तो देखो 1969 की बात है, 1969 की जनवरी मास की, हमें देहरादून से हम गए हुए थे, संदेश आया कि वहां म्यूजियम बनने वाला है, आप छुट्टी लेके आओ, तो वहां पर हम गए, तो जाने का था, बाबा को लिखा, तो बाबा ने कहा था हाँ बच्चे भले जाओ, लेकिन पहले बाबा के पास आओ और तुरंत आओ, फ्लाइट से आओ। तो देखो 1969 जनवरी का महीना, और बस बाबा ने जैसे डायरेक्शन दिया और हम भी वहां पर पहुंचे मधुबन में, दिल्ली होते हुए हमारे लौकिक पिताजी भी देहरादून से आ गए, और हम लोग 17 जनवरी को यहाँ पर पहुंच गए, 17 जनवरी की सुबह 1969। और 17 और 18 जनवरी को बाबा की जो मन जीते जगत जीत स्थिति देखी, प्रकृति जीत की स्थिति देखी, उसको कुछ हम एक्सचेंज करना चाहते हैं आपके सामने। अपनी आंखों से बाबा ने वो जो अपनी कर्मातीत अवस्था का हमें साक्षात्कार कराया, कितना दूर से बाबा ने बुला लिया आसाम से, और हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि 17 और 18 जनवरी को दो दिन हम यहाँ बाबा के पास थे। तो उसमें हमने क्या देखा, अब वो एक एक बात ये केवल सुनने की नहीं है, बल्कि चूंकि हम सबको भी कर्मातीत अवस्था को पाना है, इसीलिए एक एक बात का हम ये भी संकल्प करते जाएं कि मुझे भी ऐसी स्थिति को प्राप्त करना है। बाबा से बहुत 1962 में ज्ञान में आए, 62 से 69 में तक बहुत बार मिले होंगे, लेकिन जब 17-18 जनवरी को बाबा को मिले, बाबा के सम्मुख जाते थे, बस बाबा से ये बात करेंगे, ये पूछेंगे, ये सेवा चल रही है बाबा, ये पुरुषार्थ चल रहा है, मन में संकल्प होता था, और हमेशा तो जाते थे पूछते थे, बाबा उत्तर देते थे। लेकिन उन दो दिनों में जैसे ही बाबा के सम्मुख जाते थे, बाबा दृष्टि देते थे, और दृष्टि देके बाबा पूछते थे, कहते थे बच्चे अच्छा ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा, यानी कि हमें एक भी शब्द बोलने की जरूरत नहीं रहती थी, लेकिन मन की बात बाबा तुरंत पढ़ लेते थे और उसका समाधान कर देते। ऐसा एक बार नहीं, दो बार नहीं, 6-7 बार हुआ 2 दिन में। तो ये है मन जीते जगत जीत की स्थिति। वो ही व्यक्ति दूसरे के मन को पढ़ सकता है जिसने अपना मन पूरी तरह जीता हुआ होगा। अब बाबा की वो अंतिम कर्मातीत अवस्था थी, बाबा ने अपने मन को संपूर्ण रीति से जीत लिया था, इसीलिए बस इच्छा मात्रम अविद्या बाबा की स्थिति थी। और जब अपने मन में कोई इच्छा नहीं तो दूसरे की इच्छा को तुरंत ही पढ़ सकते हैं। ऐसा हम बच्चों को भी इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति को प्राप्त करना है। और इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण हमने उस समय भी देखा, 18 जनवरी की रात्रि को बाबा अंतिम अपनी क्लास करा रहे थे, 18 जनवरी 1969 छोटे हॉल में हम भी सामने बैठे हुए मुरली सुन रहे थे। बाबा क्लास में आए, बाबा क्लास में मुरली चला रहे थे, तो मुरली सुनते सुनते सडनली मेरे मन में इच्छा हुई, हमारे मन में, कि बाबा कुछ बोले मेरे लिए। बस मन में संकल्प उठने की देरी हुई और बाबा तो कर्मातीत अवस्था को प्राप्त हुई, आत्मा थी संपूर्ण, बस नेक्स्ट टू गॉड पूरी स्थिति को प्राप्त कर चुकी थी बाबा। तो बाबा तक वो संकल्प पहुंचा और तुरंत ही बाबा ने, क्योंकि भक्ति में भी बोलते हैं ना, भक्त के मन में इच्छा हुई, भगवान तक वो पहुंची, भगवान ने उस इच्छा को पूर्ण किया और भक्त से पूछा, भक्त ने अपनी इच्छा का वर्णन किया, भगवान के मुंह से क्या निकलता था, तथास्तु, और भगवान अंतर्ध्यान हो जाते। वो ही प्रत्यक्ष अनुभव किया, मन में संकल्प हुआ बाबा ने, जैसे अंतिम दिन 18 तारीख, तो संकल्प बाबा तक पहुंचा, बाबा को अपना संकल्प कहा, बाबा भी बस तुरंत ही संकल्प पूरा किया। आज भी 18 जनवरी की मुरली में वो साकार मुरली, बाबा की अंतिम मुरली में बाबा ने नाम लेके वो आज तक भी टेप किया हुआ महावाक्य बाबा के हैं। और जो मन में थी, बस बाबा ने उसका वर्णन करके कहा, देखो ये बच्चा है, मोहन है, बहुत मीठा बच्चा है। वो मुरली ही बाबा की अंतिम जो चली थी, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए, निंदा करने वाले को भी मित्र समझो। और उसमें वही बाबा ने कहा, और ये बच्चा है कभी किसी की निंदा नहीं करेगा, आदि आदि बाबा ने बोला। और फिर बस बाबा मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार गुड नाइट कह के बस दरवाजे तक आए और एक एक बच्चे को फिर से दृष्टि दी। बाबा को मालूम था ये मेरा आज अंतिम साकार मिलन है, क्योंकि कर्मातीत अवस्था को प्राप्त आत्मा थी। और फिर बाबा ने कहा, अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है। ये अक्षर बाबा ने पहले इतने 33 सालों में कभी नहीं कहे, 1936 से जब से यज्ञ शुरू हुआ और उस दिन तक, एक दिन पहले तक कभी भी बाबा ने नहीं कहे, उस दिन ही का, अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है। ये कह के बस सब बच्चों से बाबा अपने कमरे में गए और कमरे में दादी जी के हाथ में हाथ, नैन मुलाकात करते हुए बाबा ने विदा ली, छुट्टी ली। तो देखो अंतिम कर्मातीत अवस्था तो हम सबको भी पानी है, सबको शरीर छोड़ना ही है, कोई भी आत्मा जिसने शरीर लिया है शरीर छोड़ना है। लेकिन ब्यूटी तब है, महानता तब है, जब हम अपनी इच्छा से शरीर छोड़े। अगर प्रकृति के वश होके अर्थक्वेक हुआ, फ्लड हुआ, सुनामी आई, बिल्डिंग गिरी या कोई और, भले कारण तो कुछ निमित्त बनेगा, बाबा का भी कारण बना हार्ट का। और बाबा से बच्चों ने जब पूछा, बाबा आपकी अंतिम स्थिति कैसी थी उसका आप वर्णन करके बताओ, तो बाबा ने बताया ये वर्णन। वैसे बाबा के जो भोग लगा था उसमें भी एक दिन में ये वर्णन लिखा हुआ है पूरा। बच्ची अंत समय में ना युद्ध चल रहा था। एक तरफ कर्म भोग का युद्ध, दूसरी तरफ योग बल का युद्ध। जो इतने समय तक योग बल की तपस्या की हुई है वो भी सामने थी, और एक तरफ कर्म भोग का योग, शरीर का जो अंतिम ये पेपर था वो भी बहुत हार्ट में जैसे पेन था बहुत। तो दोनों का युद्ध चल रहा था। पहले ये बहुत भारी था कर्म भोग, बहुत तकलीफ दे रहा था, लेकिन योग बल जो है उसके सामने हल्का था। लेकिन धीरे धीरे जितना योग बल पावरफुल होता चला गया, यह कर्म भोग हल्का होता चला गया, और बाद में बस आत्मा ने शरीर ऐसे छोड़ दिया जैसे मक्खन से बाल, और बस आत्मा शरीर छोड़ के चली गई। हम बच्चों का भी यही हो कि हमें अपनी मृत्यु का पहले से आभास हो जाए, भीष्म पितामह की तरह, ब्रह्मा बाबा की तरह, कि हाँ आज मेरा ये अब अंतिम दिन है। बाबा को भी 18 जनवरी की सुबह से आभास हो गया था। 18 जनवरी की सुबह बाबा ने क्लास में आए, उस दिन मुरली नहीं चलाई, सिर्फ योग कराया। उसके बाद बाबा क्लास से बाहर आके ईशु दादी, हाँ, जो नीचे रहते हैं, शुरू से ही बाबा के अंग संग रहे हैं, बाबा ने ईशु दादी को बोला, बच्ची आज जितने भी पत्र आए हैं सबके उत्तर लिखा दो, कोई भी पत्र अनआंसर्ड न रह जाए, बिना उत्तर दिए न रह जाए, जिससे किसी भी बच्चे को ये न हो कि बाबा तो बिना उत्तर दिए चले गए। तो ईशु दादी ने सारे पत्रों के उत्तर लिखा दिए। तो आभास हो गया था, तभी तो बाबा ने कहा कि सब पत्रों के उत्तर लिखा लो। दूसरा, अंत समय में क्या होता है, जब आत्मा शरीर छोड़ के जाने को होती है तो काम वो याद आते हैं जो अनफिनिश्ड टास्क, अधूरे टास्क। और बाबा ने तो वैसे समेटना तो बहुत समय से शुरू कर दिया था, लेकिन कुछ काम बाबा के अधूरे थे। जैसे नक्की लेक के पास का जो बिल्डिंग है ना, वो लेने की बात चल रही थी, लेकिन तब हमारे यज्ञ में इतने साधन नहीं थे, इतना धन नहीं था उस बिल्डिंग को खरीदने, इसलिए वो पेंडिंग पड़ी हुई थी फाइल। उसी दिन बाबा ने उस फाइल को क्लियर किया कि आज बच्चे इस फाइल को क्लियर करो, और जिससे कि ये आज वो हो कि बिल्डिंग लेनी है, बस बाबा ने वो भी काम अधूरा। तीसरा, रोज क्लास होती है, रात्रि क्लास लगभग 9:45 बजे, 8:45 से 9 के बीच में शुरू होती है, लेकिन उस दिन बाबा ने 6:30 बजे ही एक भाई हैं जमुना प्रसाद भाई, उनको बुला के कहा आज बाबा क्लास जल्दी कराएगा, सब बच्चों को बोलो कि भोजन करके क्लास में 7 बजे आ जाए, भोजन करके, क्योंकि बाबा को मालूम था अगर बच्चे बिना भोजन किए आए तो बाद में तो ये परिस्थिति होने वाली है, कोई भोजन नहीं कर सकेगा। तो देखो बाबा को सब आभास पहले से हो गया था, इसलिए ये जो दो एक काम बचे हुए थे ये बाबा ने वो पूरा कर लिया। तो इससे हमें भी ये शिक्षा मिलती है कि अगर हमारे भी कोई अनफिनिश्ड टास्क हो, मानो कोई विल लिखनी बाकी हो, कोई ऐसा काम हो जो हमें बार बार खोज रहा हो, किसी को डेलीगेट करना हो पावर, कोई भी, क्योंकि अनफिनिश्ड अधूरा काम होगा, अंत समय वो हमारे प्राण तन से निकलने नहीं देगा, वो काम बार बार अपनी तरफ खींचेगा, और अंत मते सो गति हो जाएगी। अगर काम याद आया, व्यक्ति याद आया, वस्तु याद आई, कोई वैभव याद आया, दुर्गति हो जाएगी, और फिर से हमें इसी कलयुगी दुनिया में ही पुनर्जन्म लेना पड़ेगा उस काम को पूरा करने के लिए। इसलिए अभी से ही हम ये देखते चलें कि कोई भी हमारा अधूरा काम अगर हो, उस काम को हम पूरा करके अपनी तरफ से रख दें, जिससे अंत समय में वो याद ना आए। यहाँ पर हम लोग रहते हैं, हम लोग देखते हैं कि बहुत कई बार मधुबन में बहुत जिनके ज्ञानी आत्माओं के कोई शरीर छूटते हैं, उनके संबंधी आते हैं, भोग लगाते हैं, तो उसको जब भोग लगाते हैं तो देखते हैं वो आत्मा बहुत मतलब दुखी है, जैसे ध्यान में जब जाती है संदेशी, और कई बार तो उसकी आंखों से आंसू होते हैं। क्यों भाई, आप ज्ञानी आत्मा हो, बाबा की गोदी में हो। नहीं बाबा, मैं बहुत सोच रहा था ये बाकी है, मैं अपना ये विल करूंगा, ये यज्ञ में करूंगा, इतना मेरे पास है। मैं सोचता ही रह गया, कल 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 करते काल आ गया, नहीं कर सका। अब तो मुझे बहुत बहुत पछतावा हो रहा है, देखो मैं टालता रहा। तो ऐसा परिस्थिति पैदा ना हो, जो भी हो करना है करके हम निसंकल्प हो जाए, जिससे कभी भी काल का बुलावा आवे हम कहे हाँ बाबा हम रेडी हैं, बस तैयार हैं बाबा, चलो ब्रह्मा बाबा की तरह, बस अपनी इच्छा से हम शरीर छोड़े। तो बाबा ने उस दिन सारे बचे हुए काम जो थे वो निपटा लिए और फिर बाबा तो चले गए। लेकिन ब्यूटी उसके बाद की है कि बाबा का शरीर 18 जनवरी को छूटा और 18 जनवरी की रात को रखा रहा, 19 का सारा दिन, 19 का रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात, और 21 को दोपहर के बाद बाबा का संस्कार किया गया। लेकिन बाबा का शरीर वैसे ही चमकता रहा, कोई दुर्गंध नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं दिया गया था बाबा को, कोई लेप वगैरह दवाई का या कोई नहीं लगाया गया था, लेकिन बिल्कुल ऐसे ही वाइट, बस ऐसे ही शरीर रहा, ना कोई काला पड़ा ना दुर्गंध आई। ये है प्रकृति जीत का प्रतीक, कि प्रकृति का ना तत्वों से बना हुआ, ये पांच तत्वों से बना शरीर, इस पर भी बाबा ने संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर ली थी। और हमें याद आता है जब बाबा का शरीर लाए और यह शांति स्तंभ में यहाँ अग्नि संस्कार वगैरह किया गया, तो भी बाबा के शरीर बिल्कुल वैसा ही चमकता हुआ और काफी हद तक उसके अंदर थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी थी, नहीं तो शरीर जैसे बिल्कुल स्टिफ हो जाता है ना। ये भी एक पांच तत्वों ने अंत तक बाबा का सहयोग किया। तो ये भी अगर हम चाहते हैं कि प्रकृति के तत्वों के कारण हमारी मृत्यु ना हो, हम अपनी इच्छा से शरीर छोड़ें, वो तब होगा जब प्रकृति के तत्वों को हम अपना मित्र बना लेंगे, प्रकृति के तत्व हमारे सहयोग करें। और वो मित्र मित्र के कभी प्राण नहीं लेता, मित्र मित्र की हमेशा रक्षा करता है। तो इसका भाव क्या है? भाव ये है कि हम अपने संस्कार को प्रकृति के तत्वों के साथ मिलाते चले। फॉर एग्जाम्पल, ये तो अपने में बहुत लंबा विषय है, लेकिन यहाँ हम केवल एक एक गुण का वर्णन करेंगे। मानो ये पांच तत्व हैं, बाबा ने कहा है भारत में अधिकतर जो मृत्यु होगी, शरीर छोड़ेंगे, वो इन प्राकृतिक आपदाओं के कारण छोड़ेंगे। और विश्व के अंदर यूरोपियन देश, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वहाँ एटम बम, हाइड्रोजन बम, मिसाइल्स, उनके कारण मृत्यु होंगी। लेकिन भारत में मृत्यु प्राकृतिक आपदाओं और सिविल वार के कारण मुख्य होंगी। इसीलिए हम इन तत्वों को अपना ऐसा मित्र बना लें। बाबा ने कहा है कि ये तत्व जो है आपको पहले से इंडिकेशन दे देंगे। अभी भी ये तत्व हम लोगों को एमटेक में पढ़ाया गया था, इंजीनियरिंग में, जब अर्थक्वेक साइंस वगैरह, कि जब अर्थक्वेक आने वाला होता है, विज्ञान के साधन को एक सेकंड पहले भी पता नहीं चलता कि ये आपदा आने वाली है। लेकिन कुछ पशु पक्षी ऐसे हैं, वो इन हार्मनी विद नेचर है, प्रकृति के समीप है, वो उनको पहले से पता चल जाता है। सांप है, बिच्छू है, मेंढक है और गाय भैंस वगैरह हैं, ये इनके अंदर पहले से ही पृथ्वी के अंदर जो परिवर्तन होते हैं, पहले से ये भांप लेते हैं और तुरंत खूंटे तोड़ा के भागते हैं, तुरंत वो बिलों से बाहर निकल जाते हैं। उनकी सिक्स सेंस इतनी पावरफुल इसलिए है कि वो प्रकृति के साथ उनका ज्यादा निकटता है। अब बाबा चाहता है हम भी, हमारी भी प्रकृति के साथ इतनी निकटता हो, पांच तत्वों के साथ, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, ये भी तो देवता हैं। जल देवता, अग्नि देवता, वायु देवता कहते हैं ना, इनका गायन है, तो इनके साथ हमारी इतनी निकटता हो कि ये हमें पहले से सोचना था, और ये कब होगा, जब हमें इतना अपने संस्कार उनके संस्कारों से मिला के चलेंगे। मित्र कहता के संस्कार निकट होते हैं ना, तो जल का संस्कार कौन सा है, शीतलता बहुत हा? लेकिन उससे भी निकट का संस्कार है फ्लेक्सिबिलिटी। जल को जिस बर्तन में लो उस बर्तन का स्वरूप धारण कर लेता है, गिलास में लो गिलास का रूप ले लेगा, कटोरी में लो कटोरी का रूप ले लेगा, सब में एडजस्ट हो जाता है। ऐसे मेरा भी ये संस्कार हो कि मैं हर आत्मा से एडजस्ट होकर चल सकूं, किसी भी आत्मा के साथ मेरे टकराव ना हो, हर सास का बहू के साथ, बाप का बेटे के साथ, भाई का भाई के साथ आदि आदि। तो जब ये टकराव नहीं होगा, जितना हमें एडजस्टमेंट का संस्कार होगा, तो यानी कि हमने जल का संस्कार अपने अंदर धारण कर लिया, तो कभी भी जल हमारी मृत्यु का कारण नहीं बन सकता। जितना फ्लड हो, जितना सुनामी आए, जितना चारों तरफ पानी हो, वहां तक पानी आके रुक जाएगा, मेरे मृत्यु का अशांति का दुख का कारण नहीं बन सकता, अगर हमने जल का ये संस्कार अपना संस्कार बना दिया। और भी बहुत संस्कार है जल के, शीतलता है, ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता है, स्वच्छता का है, प्यास बुझाने का संस्कार आदि आदि, हम उनमें नहीं जाते, एक एक बताते हैं। ऐसे ही जल से तो बचने का साधन ये हो गया, आप लोग भी बंबई से आए हो ना, जल ही वहां पर बहुत आजकल भी जल काफी अपना तांडव नृत्य दिखा रहा है जैसा न्यूज में आता है। लेकिन जल को अगर हम वो कहते हैं ना, रोज हम प्रतिदिन थोड़ा समय एक दो मिनट ही सही जल के सम्मुख, हे जल देवता आओ हम और आप मिलकर के इस सृष्टि को सुखमय बनाएं, स्वर्गिक सृष्टि बनाएं। हमें याद है हमारा पर्यावरण जागृति अभियान निकल रहा था, 94 की बात है, और उस समय वहां पर बाबा की मुरली चली थी, यहाँ पर कैसे तत्वों के साथ हमें मित्रता करनी चाहिए, जो मैं आज ये बात आपको बता रहा हूँ। तो बाबा ने बताया था, उसके प्रमाण हम लोग वहां पर कनानूर केरल में वहां हम थे, उसी दिन वहां वो मुरली पड़ी। तो अगले दिन सुबह का कार्यक्रम बनाया, सब समुद्र के किनारे चलेंगे गए, और बस बहुत शांत समुद्र था, उससे काफी दूर करीब 500 फीट दूर बहुत दूर जाके बैठ गए, और हम लोग करीब 15 लोग थे भाई बहने, बस रेत पर समुद्र के वहां बैठ गए, और बस जल देवता को अपना योगदान कर रहे थे। और जो जो बाबा ने मुरली में चलाया था, 94 की मुरली है, वैसे वार्तालाप कर रहे थे। बाबा कहता है अब वार्तालाप करो तत्वों के साथ, तो वार्तालाप कर रहे थे और बस यही कह रहे थे, हे जल देवता आओ हम और आप मिलके इस सृष्टि को पावन बनाएं, अगर आप तक हमारे वाइब्रेशन पहुंच रहे हैं तो आओ। बाबा कहता है शेक हैंड करके जाओ, हम होवनहार देवताओं के चरण स्पर्श करके जाओ, ये रियलिटी बता रहे हैं। और बस 4 बजे से योग शुरू किया, 4:15 हुआ, 4:30 हुआ, 4:45 हुआ, 5:05 तक बस योगदान करते रहे। उसके बाद पता नहीं समुद्र बिल्कुल शांत था, फिर एकाएक ही जस्ट 2-1 मिनट रह गए थे, पता नहीं कहां से एक लहर आई पानी की, बहुत दूर समुद्र तक आई, और जहां हम बैठे थे वहां हम सब के चरण स्पर्श करके वो लहर चली गई। ये तत्वों के साथ जब वार्तालाप करते हैं, योग के प्रयोग करते हैं, बाबा भी अपने बच्चों को ये प्रकृति जीत बनाता चलता है। ये प्रैक्टिकल उदाहरण है, बहुत उदाहरण है, यहाँ तो अभी समय हो गया, मैं एक्स्ट्रा समय जंप कर गया हूँ, लेकिन मैं समाप्त करना चाहूंगा। एक तत्व के साथ पृथ्वी का सबसे बड़ा गुण कौन सा है, सहनशीलता। और पृथ्वी में सबसे बड़ा गुण है, पृथ्वी दाता है, देती है। पृथ्वी में देखो एक बीज बो दो पेड़ उगाएगा, हजारों बीज पैदा हो जाएंगे। पृथ्वी से ही अन्न मिलता है, फल मिलता है, जल मिलता है, पेट्रोल, सब चीज पृथ्वी से मिलती है, सब्जी, पृथ्वी दाता है। ऐसे ही बाबा कहते हैं आप बच्चों को भी दाता बनना है। कोई भी आपके सम्मुख आए बस बिना कुछ ग्रहण किए ना जाए, खाली हाथ ना जाए। कम से कम ऐसी चीज दे सकते हो जिसमें कुछ खर्चा नहीं होता, प्रेम है, शांति है, शुभ भावना है, शुभकामना है, उसको कोई भी सहयोग है, उन सब चीजों में तो कोई भी खर्च नहीं होता है। कोई आत्मा आए उसको हम ये दान करते चले, वो भरपूर होके जाए, तो इसका मतलब मैंने पृथ्वी का गुण धारण कर लिया और पृथ्वी का जो सबसे बड़ा दातापन का गुण है मैं भी दाता बन गई। तो क्या हो गया, कभी भी पृथ्वी में जितनी भी हलचल होगी, अर्थक्वेक होगी, भूचाल आएगा, बहुत जितना भी भूकंप आए, लेकिन मेरा बाल बांकानी जो बाबा ने कहा इतनी दूर तक आके विनाश रुक जाएगा, आपके पास तक नहीं आएगा। और वो देखा प्रैक्टिकली कच्छ भुज में भी आया, बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन कभी ऐसे उदाहरणों को सुनो यज्ञ के पुराने लोगों से, पता चलेगा कैसे बाबा ने एक एक बच्चे की रक्षा की। तो वो कब होगा, जब हमने पृथ्वी का ये गुण धारण किया होगा। बहुत गुण है, वो आप निकालना, हरेक जाके पांच पांच गुण एक एक तत्व के निकाले और फिर अपने से मैच करे मुझ में वो गुण है, यदि नहीं है उन गुणों को आज से धारण करने का पुरुषार्थ करे। तो ये है पृथ्वी का गुण। तो जितना भी अर्थ को एक होगा, ऐसे वायु का क्या गुण है, वायु का है हल्कापन। तो बस जितना कोई परिस्थिति आए हम भारी ना हो, बस हम हल्के रहेंगे तो क्या होगा, सदा ये हल्के रहने का गुण आ जाएगा। तो वायु में जितना भी तूफान आएंगे, साइक्लोन आएंगे, बवंडर आएंगे, जितना भी विनाश का कारण वायु बने, लेकिन वायु के द्वारा मेरा बाल बांका नहीं, अगर मैंने हल्केपन का गुण धारण किया होगा। देखो विपरीत गुण भी एक दूसरे के सहयोगी होते हैं। अब धरती, धरती का गुण है हर चीज को नीचे खींचना, वायु का गुण है हर चीज को ऊपर ले जाना, लेकिन दोनों म्यूचुअल कोऑपरेटिव है, एक दूसरे के सह अस्तित्व है। जहां जहां धरती है वहां वहां वायु है, वायु का उल्टा गुण है, धरती का दूसरा गुण है उल्टा, दोनों के उल्टे गुण है, लेकिन साथ साथ रहते हैं। ऐसी हम भी परिवार में रहते हैं, अलग अलग गुणों के वो है, संस्कार वाले लोग हैं, किसी का कोई संस्कार, किसी का कोई, लेकिन विपरीत संस्कार होते हुए भी हम साथ साथ प्रेम से रहे, सह अस्तित्व की भावना हो। ऐसी आकाश का क्या गुण है, विशालता। तो हम होवनहार महान आत्माओं में सबसे बड़ा से बड़ा गुण कौन सा होना चाहिए, हृदय की विशालता, जो आज भी बाबा ने आज वरदान दिया ना, उसमें कहा ना, जितना भी हलचल से दिल शिकस्त होने वाला वातावरण हो, लेकिन बड़े दिल से उसको पूरा, हिम्मत से पूरा करो, बड़े दिल से, हिम्मत ये विशालता का प्रतीक है। अब वो बड़े से बड़ा गुण है क्षमा भाव का। कोई हम जानते हैं ये भाई या ये बहन विपरीत स्वभाव का है, मेरे मार्ग में रोड़े अटकाता है, मुझे कष्ट देता है, उसे हमारा आगे बढ़ना अच्छा नहीं लगता, नेगेटिव प्रकृति का है, लेकिन हम उसके इस अवगुण को दिल में न रखें, उसे क्षमा देते चले। क्षमा महान आत्माओं का गुण है, जो हमने ब्रह्मा बाबा में, मामा में, दादियों में देखा। बड़े से बड़ी बात हो जाती थी, ये महान आत्मा कभी भी किसी का अवगुण चित पर नहीं रखते थे। ये आकाश का अगर ये गुण धारण कर लिया होगा तो क्या होगा कि आकाश मार्ग से आने वाली जितनी भी विपत्तियां होंगी, बम होगा, मिसाइल होगा, रॉकेट होगा, या क्लाउड बर्स्ट, बादल फटने का होगा, जितनी बारिश होगी, कुछ भी होगा, लेकिन वो मेरे दुख, अशांति या विनाश का, मृत्यु का कारण नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि आकाश जैसा गुण हमने धारण कर लिया, आकाश हमारी मृत्यु का कारण नहीं बन सकता। ये प्रकृति जीत बनना हुआ और इसी तरह अग्नि का स्वरूप है सूर्य, तो ऊपर सूर्य का क्या गुण होता है, अग्नि का क्या गुण होता है, अग्नि में जो चीज डालो उसका रूप परिवर्तन हो जाता है। ऐसे ही अगर हमारा अग्नि स्वरूप हुआ, ज्वालामुखी योग का हमारा स्वरूप हुआ, वॉल्केनिक योग, तो बाबा ने कहा उसका प्रमाण क्या है, आपके सामने अंत समय बहुत आत्मा आएंगी लेकिन उनका रूप परिवर्तन हो जाएगा, रोती हुई आत्मा आए हंसती हुई चली जाए, दुखी आत्मा आए सुख के सागर में लहराती हुई चली जाए, अशांत आत्मा आए शांति की ऐसी अनुभूति हो कि सब अशांति के कारण को भूल जाए, ऐसा मेरा स्वरूप हो जो उसका रूप बदल दे, दुख को सुख में, शांति अशांति को शांति में, ऐसा वो तब होगा जब हमने ये अग्नि का रूप धारण, वॉल्केनिक योगा ज्वालामुखी योग का स्वरूप धारण किया होगा। तो इसीलिए अंत में दादी जानकी का उदाहरण देते हुए मैं समाप्त करता हूँ। 1999 दिसंबर की बात है, दादी जानकी की बहुत तबीयत खराब थी, लोटस अहमदाबाद में थी, तो यहाँ पर बाबा आए हुए थे दिसंबर में, 31 दिसंबर को हमेशा बाबा आते हैं, तो मुरली जब चल गई तो बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी जी और निर्वैर भाई जी बाबा के पास गए, बाबा को बता रहे थे बाबा दादी जानकी की तबीयत बहुत खराब है, सीरियस है, और डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है, डॉक्टरों ने बोल दिया है कि भाई बस जो भी जिसको बुलाना हो बुला दो और ये तो बहुत सीरियस है। तो बाबा ने सुना और बाबा ने कहा नहीं बच्चे उस आत्मा को कुछ नहीं होगा, वो प्रकृति जीत आत्मा है। देखो ये शब्द बाबा ने दादी जानकी के लिए यूज किया, प्रकृति जीत आत्मा है। तो देखो कहां 1999 की बात और आज 2019 हो गया, 20 साल हो गए हमारे आपसे ज्यादा दादी सर्विस करते हैं, आज भी वो लंदन में है। तो प्रकृति जीत बनना यानी अपनी प्रकृति को भी मन को भी जीतना और बाहर की ये प्रकृति पांच तत्वों को जीत करके हम सब बस बाबा के नैनों पर बैठ के अपने वतन चले जाए। ओम शांति, ओम शांति।
जल थल तेज पवन गगन ये
जल थल तेज।